ये आकाशवाणी दिल्ली है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा कल से शुरू होगी। विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने कई इंतजाम किए। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी कपड़ा प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आज नई दिल्ली में संपन्न। और दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के निकी कालियांदा पुनाचा और जिम्बाब्वे के कर्टनी जॉन लॉक की जोड़ी फाइनल में पहुंची। समाचार के साथ मैं मुदिता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत अंग्रेजी विषय की परीक्षा के साथ होगी, वहीं 12वीं की परीक्षा की शुरुआत फिजिकल एजुकेशन विषय की परीक्षा के साथ होगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाए। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में आधे घंटे पहले पहुंचना होगा और 10 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीबीएसई ने विद्यार्थियों के तनाव को कम करने और उन्हें परीक्षा की तैयारी में सहायता देने के लिए मनोसामाजिक परामर्श सेवाएं भी शुरू की हैं। ये सेवाएं 4 अप्रैल तक उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सही खाना और सही सोना विद्यार्थियों को अच्छी तरह से परीक्षा देने में मदद करेगा। परीक्षा पे चर्चा के चौथे चरण में पोषण विशेषज्ञ डॉ. रुजुता दिवेकर, रेवंत हिम्मत सिंका और सोनाली सबरवाल ने परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को याददाश्त बढ़ाने, ऊर्जावान बने रहने और एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने के बारे में पोषण संबंधी उपाय बताए। डॉ. रुजुता ने विद्यार्थियों को कुछ पोषण युक्त भोजन के बारे में भी बताया।
कुछ खाने ऐसे हैं जो कि नेचुरल तो है ही पर डी स्ट्रेसर्स भी है। तो सबसे पहला जो है वो है, हम लोग जिसको सिंगदाना या मूंगफली कहते हैं, तो सिंगदाने से स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी ड्रिंक्स से स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा है केला, केला हर किसी को खाना चाहिए। और तीसरी चीज चावल, जिस तरीके से भी आप चावल खाना चाहते हो वो खाइए, लेकिन ये तीनों चीजें आपके डाइट में होनी चाहिए।
तनाव मुक्त जीवन जीने के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर सहमति व्यक्त करते हुए इन विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने और एक योद्धा की भावना के साथ परीक्षा देने को प्रेरित किया। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने कई पहल की हैं। 4 अप्रैल तक होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा के मद्देनजर 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों और हजारों स्कूल कर्मचारी शहर भर में आवागमन करेंगे। दिल्ली मेट्रो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ मिलकर परीक्षा के दिनों में बढ़ती भीड़ को समायोजित करने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर विशेष सुविधा उपाय लागू करेगी। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि परीक्षा का एडमिट कार्ड ले जाने वाले विद्यार्थियों को मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त टिकट ऑफिस मशीन और कस्टमर केयर केंद्रों पर टिकट खरीदते समय अपने एडमिट कार्ड दिखाने वाले छात्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि सभी मेट्रो स्टेशनों पर विद्यार्थियों के लिए विशेष घोषणाएं की जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने विद्यार्थियों से अनुरोध किया है कि परीक्षा वाले दिन घर से समय से पहले निकलें ताकि उन्हें कोई भी समस्या न हो। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन पर धन शोधन के तहत मामला दर्ज है। श्री जैन इस मामले में कई महीनों की सजा जेल में काट चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री को जमानत पर रिहा किया हुआ है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सीएमओ दिल्ली के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को चोरी करने का आरोप लगाया है। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के आईटी विभाग को पूर्व मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए।
अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार के सीएमओ ऑफिस का अकाउंट हाईजैक किया है, उसकी दिल्ली सरकार के आईटी विभाग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, उसके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है।
इस बीच दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि पार्टी के विधायकों के बीच विभागों को लेकर कलह मची हुई है। सुश्री आतिशी ने कहा कि भाजपा अपने चुनावी वायदों को भूल चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने दिल्ली की स्वच्छता और स्वास्थ्य में स्वच्छता अधिकारियों की निर्णायक भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने सफाई कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी दिल्ली की रीढ़ हैं और उनके बिना स्वच्छ दिल्ली की कल्पना करना मुश्किल है। उन्होंने कोविड-19 महामारी, यमुना नदी की बाढ़ और G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन जैसे चुनौतीपूर्ण समय में सफाई कर्मचारियों के समर्पण की सराहना की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज झुग्गी बस्ती पालकों और विस्तारकों को प्रदेश कार्यालय में सम्मानित किया। उन्होंने सभी पालकों और विस्तारकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के सूत्रधार आप सभी रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार झुग्गी वासियों के संपर्क में रही और हमारे कार्यकर्ताओं ने हर समस्या को देखा, समझा और उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अब झुग्गी वासियों से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार का गठन होने के बाद भाजपा अपने वायदों को पूरा करने के लिए काम करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी कपड़ा प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में 6,000 विदेशी आयातक भाग लेंगे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरे दुनिया में विश्वसनीयता बढ़ा है, उसके कारण आज यहाँ लोगों का आना शुरू हुआ है। पिछले साल 3,000 बायर आए थे, इस बार 6,000 रजिस्टर्ड हुए हैं। अभी लगभग 3,500 बायर आ चुके हैं सवेरे तक। तो ये लग रहा है 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे भारत मंडप में और दुनिया के बायर को, डोमेस्टिक बायर को भी वो संबोधन करेंगे।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह ने स्वयं को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऊर्जा मंच के रूप में स्थापित किया है। नई दिल्ली में आज ऊर्जा सप्ताह के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि यह मंच केवल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के बजाय वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करके अन्य वैश्विक ऊर्जा मंचों से अपने को अलग करता है। ऊर्जा सप्ताह का अगला संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें उन्होंने यूट्यूब पर कथित रूप से घटिया टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ दायर अनेक प्राथमिकियों को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इलाहाबादिया के वकील की दलीलों पर विचार के बाद कहा कि इस मामले को कुछ दिनों में सूचीबद्ध किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए राजधानी के पुलिस मुख्यालय में एक साइबर सुरक्षा बूथ स्थापित किया है। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बूथ का उद्देश्य मोबाइल फोन और स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित करना है। दिल्ली पुलिस के साइबर सुरक्षा बूथ में कई विशेषताएं हैं जैसे मैलवेयर पहचान, जो मोबाइल फोन और बाहरी स्टोरेज डिवाइसों पर मैलवेयर, वायरस और बैकडोर की पहचान करता है। बूथ का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल को कनेक्ट करना होगा और ऑन स्क्रीन निर्देशों का पालन करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। देश आज 2019 में पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों को याद कर रहा है। 6 वर्ष पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। लोग कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 के माध्यम से भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव इस 21 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव का आयोजन देश विदेश में किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन कोलंबो और काठमांडू सहित देश के 13 शहरों में किया जा रहा है। 28 जनवरी से शुरू हुआ यह रंगारंग महोत्सव इस महीने की 16 तारीख तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महोत्सव में 200 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां, चर्चाएं, मास्टर क्लास जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन विषय पर आधारित इस महोत्सव में रूस, इटली और स्पेन सहित 9 देशों की 200 से अधिक प्रस्तुतियां दिखाई जा रही हैं। वहीं जापान, जर्मनी और श्रीलंका जैसे देशों के जाने माने थिएटर कलाकार और निर्देशक ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया है। महोत्सव में रंगहार जैसा मंच है जो थिएटर कलाकारों, प्रोग्रामरों, संरक्षकों और समर्थकों को एकजुट कर रहा है। इसमें रंगमंच को लेकर चल रही अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के बारे में भी बताया जा रहा है और साथ ही निर्देशकों व रंगकर्मियों को एक मंच प्रदान कर रहा है। भारत रंग महोत्सव 2025 में लोगों को पारंपरिक, लोक, आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय नाट्य प्रस्तुतियों का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये प्रस्तुतियां भारत के 11 शहरों अगरतला, अहमदाबाद, भटिंडा, भोपाल, बेंगलुरु, दिल्ली, गोवा, गोरखपुर, जयपुर, खैरागढ़ और रांची में आयोजित की जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
5 दिवसीय पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कल से होने जा रहा है। एक आवाज एक राष्ट्र थीम के तहत यह कार्यक्रम 20 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत की खेल भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। महोत्सव के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए असम राइफल्स के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 4,500 छात्र और निजी विश्वविद्यालयों के लगभग 7,000 से 8,000 छात्र इस आयोजन की तैयारी कर रहे हैं।
The day of the program, there will be around 800 odd students or 850 odd students and rest will be the dignitaries who have been invited. So that is an idea and agle saal bhi hum chahenge ki is baar to pehla hai, maybe isse hum aur lessons learn karenge aur humko ideas milenge aur hum chahenge ki ye story aage badhe. And definitely the reach of the camera and the power of the word and literature, this thing will definitely help all of us to make sure that the far east of our country is represented in equal
In the heart of India. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। यह महोत्सव जनजातीय समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खानपान तथा वाणिज्यिक जनजीवन को लोगों से परिचित कराता है। दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के निकी कल्याणा पुनाचा और जिम्बाब्वे के कर्टनी जॉन लॉक की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा कल से शुरू होगी। विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने कई इंतजाम किए। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी कपड़ा प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन किया और भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आज नई दिल्ली में सम्पन्न।